एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक कह सकते हैं एक बहुत ही विशाल और प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगा रहे हैं, त्रिपिटक।
त्रिपिटक, हाँ मैंने सुना है। पाली भाषा में इसका मतलब है तीन टोकरियां, पर ये कोई एक किताब नहीं है, सही का?
हाँ बिल्कुल नहीं, ये कोई एक सीधी साधी किताब नहीं, बल्कि थेरवाद बौद्ध धर्म का पूरा समझिए एक प्रामाणिक ग्रंथ संग्रह है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा।
अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्यों इसे इतना सहेज कर रखा गया?
देखिए, इसका केंद्रीय उद्देश्य है सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध, उनके शिक्षाओं को संभाल कर रखना और उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से पेश करना। और क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन की जो सबसे बड़ी पहेली है ना, दुख, जिसे पाली में दुख कहते हैं, उसको समझने और उससे उसे पार पाने का रास्ता दिखाता है।
दुख, ये तो ऐसी चीज है जो हम सब महसूस करते हैं। तो क्या यही बात इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है, इतने सालों बाद भी?
बिल्कुल यही बात त्रिपिटक हमें बताता है कि देखो, दुख जीवन का हिस्सा है, ये सच है, पर ये हमारी किस्मत नहीं है कि हम हमेशा दुखी ही रहें।
अच्छा, तो फिर इसका कारण क्या है?
इसके जड़े हमारी इच्छाओं में है, हमारे मोह में, चीजों को ठीक से ना समझ पाने में, जिसे अज्ञानता कहते हैं। पर सबसे अच्छी बात क्या है
क्या?
कि इससे मुक्ति का एक बहुत साफ, एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया गया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग।
आर्य अष्टांगिक मार्ग, हाँ ये नाम सुना है।
और ये मार्ग हमें शांति, एक गहरी समझ यानी ज्ञान और करुणा की एक स्थायी अवस्था तक ले जा सकता है। उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं।
निर्वाण,
ये उन बुनियादी सवालों को छूता है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। भई हम क्यों बेचैन रहते हैं? हमारी इस अंदरूनी खटपट का कारण क्या है? और क्या सच में कोई तरीका है जिससे स्थायी शांति मिल सके?
सही का? तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है मन का। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसका तनाव, आपसी मनमुटाव, जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश, इन सब के लिए इसमें कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलता है। लक्ष्य एक ही है, दुख से मुक्ति।
कमाल है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, इतना विशाल ज्ञान, इतनी सारी बातें, इसे लिखा किसने? मतलब कौन है इसके लेखक?
ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, त्रिपिटक के लेखक के तौर पर अक्सर लिखा जाता है विभिन्न लेखक,
हाँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कई लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया या जोड़ दिया, ऐसा नहीं है।
तो फिर
ये असल में सदियों तक बौद्ध मठवासी समुदाय, जिसे संघ कहते हैं, उनके द्वारा संकलित और संरक्षित किया गया पवित्र ज्ञान है। समझिए, एक सामूहिक प्रयास है ये।
अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
इसकी जड़ें तो स्वयं बुद्ध की शिक्षाओं में है, जो करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनके जो प्रबुद्ध शिष्य थे, उन्हें चिंता हुई
किस बात की?
कि कहीं ये अनमोल ज्ञान, ये शिक्षाएं समय के साथ खो ना जाएं या लोग इन्हें बदल ना दें। तो उन्होंने पहली बौद्ध संगीति बुलाई। संगीति मतलब एक तरह की बड़ी सभा या काउंसिल।
पहली बौद्ध संगीति, और उसमें क्या हुआ?
उस संगीति में दो शिष्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक थे आनंद।
आनंद बुद्ध के भाई?
हाँ, बुद्ध के चचेरे भाई थे और 20 साल से ज्यादा उनके सबसे करीबी सहायक, उनके पर्सनल अटेंडेंट रहे। कहते उनकी याददाश्त गजब की थी, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं।
वाह,
उन्होंने बुद्ध के दिए हजारों उपदेश, जिन्हें सुत्त कहते हैं, वो कंठस्थ सुनाए, मतलब जुबानी याद थे उन्हें, और यही उपदेश आगे चलकर सुत्तपिटक का आधार बने।
हजारों उपदेश, कमाल है।
हाँ, और उनके सुनाए उपदेश अक्सर शुरू होते हैं एवं मे सुत्तम से,
एवं मे सुत्तम,
यानी ऐसा मैंने सुना है। ये एक तरह से उनकी गवाही है कि ये मैंने सीधे बुद्ध से सुना है। प्रामाणिकता की मुहर समझिए।
बहुत खूब। और दूसरे महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे?
दूसरे प्रमुख शिष्य थे उपाली। वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे, जो अनुशासन था, उसके विशेषज्ञ थे।
अच्छा, नियमों के ज्ञाता।
हाँ, उन्होंने वो आचार संहिता और संघ को चलाने के नियम सुनाए जो आगे चलकर विनय पिटक कहलाए। देखिए, कोई भी समुदाय बिना नियमों के तो नहीं चल सकता ना, तो ये नियम जरूरी थे ताकि अभ्यास के लिए सही माहौल बना रहे।
सही बात है, लेकिन ये सब सिर्फ सुनाया गया, लिखा नहीं गया।
बिल्कुल, दिलचस्प बात यही है कि ये सब शुरुआत में लिखा नहीं गया था। सैकड़ों सालों तक भिक्षुओं और भिक्षुणियों की पीढ़ियां इन शिक्षाओं को मुंह जबानी याद करती रहीं। वो साथ में बैठकर इन्हें दोहराते थे, जिसे संगायन कहते हैं, ताकि कोई भूल चूक ना हो, एक शब्द भी इधर उधर ना हो,
ये तो अद्भुत परंपरा है ज्ञान को कंठस्थ करने की,
है ना? आखिरकार लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका में इसे ताड़पत्रों पर लिखा गया, पहली बार लिपिबद्ध किया गया।
श्रीलंका में?
हाँ।
अच्छा,
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ बाद के जो विद्वान भिक्षु और दार्शनिक हुए, जैसे नागार्जुन, असंग, बुद्धघोष,
बड़े बड़े नाम हैं।
हाँ, सुने हैं, उन्होंने इन सिद्धांतों का और गहरा विश्लेषण किया, उन्हें व्यवस्थित किया, इससे अभिधम्म पिटक का विकास हुआ। ये मन और वास्तविकता की प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म, बहुत गहरा विश्लेषण है।
तो मतलब लेखक कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रबुद्ध व्यक्तियों, समर्पित मठवासियों और प्रतिभाशाली विद्वानों की एक पूरी परंपरा है।
बिल्कुल सही समझे। उनका अधिकार या अथॉरिटी उनकी व्यक्तिगत रचनात्मकता से ज्यादा इस बात में थी कि वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षक थे। उन्हें ध्यान के गहरे अनुभव से जो अंतर्दृष्टि मिली थी और जो परिषदों में सामूहिक रूप से तय हुआ था, वो उसे आगे बढ़ा रहे थे।
वो नए सिद्धांत नहीं गढ़ रहे थे?
नहीं, वो बुद्ध के दिखाए मुक्ति के मार्ग को बस स्पष्ट कर रहे थे, उसे समझा रहे थे। उनका जोर कितादी ज्ञान पर उतना नहीं था जितना उस मार्ग पर चलने के अनुभव पर था।
समझ गया। ये जानना बहुत जरूरी था कि ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा। अब जरा इन तीन टोकरियों को थोड़ा और खोलते हैं।
जरूर। तो जैसा हमने कहा, त्रिपिटक का मतलब है तीन टोकरियां। ये प्राचीन भारत का एक रूपक है। जैसे मजदूर ईंटों या मिट्टी की टोकरियां एक हाथ से दूसरे हाथ तक पास करते थे, वैसे ही बुद्ध की शिक्षाएं गुरु से शिष्य तक इन ज्ञान की टोकरियों में पहुंचाई गईं।
अच्छा रूपक है
ये। मानव मुक्ति के सिद्धांतों और अभ्यास का एक पूरा गाइड है, एक पूरा पुस्तकालय।
और ये किसके लिए? क्या सिर्फ भिक्षुओं के लिए?
देखिए, शुरुआत में तो ये मुख्य रूप से भिक्षु भिक्षुणियों के समुदाय यानी संघ के लिए ही था, लेकिन इसकी जो बुद्धिमत्ता है, जो ज्ञान है, वो इतना गहरा और सार्वभौमिक है कि आज दुनिया भर में आम लोग हों, विद्वान हों, मनोवैज्ञानिक हों, या कोई भी जो आध्यात्मिक राह पर चल रहा हो, सबके लिए ये प्रेरणा और गहरी समझ का एक बड़ा स्रोत बन गया है।
तो ये पाठक को कैसे गाइड करता है, मतलब इसकी संरचना कैसी है?
ये पाठक को एक तरह की यात्रा पर ले जाता है, परत दर परत। ये सबसे सीधी और व्यावहारिक शिक्षाओं से शुरू होता है जो आसानी से समझ आ जाएं।
ठीक है।
फिर ये उन नियमों और व्यवस्थाओं पर आता है जो साधना करने वाले समुदाय को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और अंत में ये मन और वास्तविकता की बहुत गहरी, बहुत बारीक, थोड़ी जटिल लगने वाली परतों को खोलता है। ज्ञान धीरे धीरे गहरा होता जाता है।
अच्छा, तो अब उन तीन टोकरियों पर आते हैं। पहली कौन सी है?
पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण टोकरी है सुत्तपिटक, यानी प्रवचनों की टोकरी। ये शिक्षाओं का दिल है, समझिए।
दिल? क्यों?
क्योंकि इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के दिए हजारों उपदेश, जिन्हें सुत्त कहते हैं, उनके संवाद, उनकी कविताएं, गाथाएं शामिल हैं।
हजारों? बाप रे।
हाँ, हजारों। और इसमें कहानियों, उपमाओं, दृष्टांतों और सीधे निर्देशों के जरिए मुख्य सिद्धांत समझाए गए हैं, जैसे चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, कर्म का नियम, अनित्यता यानी सब कुछ बदलता है, अनात्म यानी कोई स्थायी मैं नहीं है, ये सब। ये मुख्य रूप से धम्म पर केंद्रित है।
धम्म यानी सत्य या नियम?
हाँ, अस्तित्व का मौलिक सत्य या नियम।
समझ गया। तो ये हुई पहली टोकरी, दूसरी कौन सी है?
दूसरी है विनय पिटक, अनुशासन की टोकरी। ये बौद्ध समुदाय यानी संघ की नैतिक और संस्थागत रीढ़ है।
रीढ़ की हड्डी, मतलब ये नियम कानून वाली टोकरी है।
हाँ बिल्कुल। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए विस्तृत आचार संहिता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही संघ को चलाने की प्रक्रियाएं, जैसे किसी नए सदस्य को कैसे शामिल करना है, पाक्षिक सभाएं कैसे करनी है, इन सबके नियम भी इसमें है।
अच्छा, तो ये समुदाय को चलाने के लिए है।
इसका मुख्य मकसद एक ऐसा अनुशासित और सद्भावपूर्ण माहौल बनाना है जहां धम्म का अभ्यास अच्छी से हो सके। ये प्रैक्टिस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा है।
ठीक है, और तीसरी टोकरी?
तीसरी है अविधम्म पिटक। इसे उच्च या विशेष सिद्धांत की टोकरी कहते हैं। ये त्रिपिटक का सबसे गहरा, सबसे दार्शनिक और मनोविज्ञानिक हिस्सा है।
सबसे गहरा मतलब ये मुश्किल है?
थोड़ा जटिल जरूर है, विश्लेषणात्मक है। ये सुत्त पिटक के सिद्धांतों को लेता है और उन्हें एक बेहद व्यवस्थित, बहुत बारीक, कहीं कहीं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगने वाले ढांचे में पेश करता है।
किस तरह का ढांचा?
ये चेतना कैसे काम करती है, वास्तविकता के मूल तत्व क्या हैं और उन तत्वों के बीच कारण और परिणाम का संबंध कैसा है, इसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करता है। इसे कई बार बौद्ध मनोविज्ञान या मन का नक्शा, मैप ऑफ द माइंड भी कहा जाता है।
मन का नक्शा, दिलचस्प है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है मन और पदार्थ को उनके सूक्ष्मतम घटकों में तोड़कर देखना, ताकि एक गहरी भेदने वाली समझ, जिसे पाली में पंजा कहते हैं, विकसित हो सके। इससे मैं और मेरा का जो भ्रम है वो टूटता है।
तो ये तीनों पिटक मिलकर क्या बनते हैं?
ये तीनों मिलकर एक पूरी प्रणाली, एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। सुत्त पिटक बताता है क्या जानना और करना है और क्यों। विनय पिटक बताता है कि इस अभ्यास को करने वाले समुदाय में कैसे रहना है, कैसे सपोर्ट मिलेगा। और अभिधम्म पिटक मन और वास्तविकता की एक गहरी विश्लेषणात्मक समझ देता है, जिससे वो क्यों और भी स्पष्ट हो जाता है।
तो ये एक तरह से मानव चेतना को बदलने का पूरा पाठ्यक्रम है?
हाँ बिल्कुल, जिसका अंतिम लक्ष्य है दुख को जड़ से मिटाना और अपना और सभी प्राणियों का कल्याण करना।
चलिए अब इन पिटकों के अंदर थोड़ा और झांकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा तकनीकी ना हो। विनय पिटक से शुरू करते हैं। आपने कहा यह संघ के लिए है?
हाँ, ये संघ के अस्तित्व का आधार है। ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि मठवासी जीवन का एक व्यवहारिक, नैतिक और कानूनी ढांचा है। इसमें भिक्षुओं के लिए करीब 227 नियम और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम हैं।
इतने सारे नियम?
हाँ, लेकिन हर नियम के पीछे अक्सर एक कहानी होती है कि वो कौन सी घटना थी जिसने बुद्ध को वो नियम बनाने के लिए प्रेरित किया। ये बुद्ध के प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। ये व्यक्तिगत अनुशासन और सामुदायिक सद्भाव दोनों को जोड़ता है। इसमें संघ में प्रवेश कैसे हो, सभाएं कैसे हो, बारिश के मौसम में क्या नियम हो, भोजन, वस्त्र, आवास, दवा, सबके बारे में नियम है। समझिए, संघ का संविधान और ऑपरेटिंग मैनुअल है ये।
अच्छा, और सुत्त पिटक के बारे में आपने बताया कि वो सबसे बड़ा है, उसमें क्या क्या है?
हाँ, वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है। इसमें बुद्ध की सीधी शिक्षाएं हैं। इसे पांच बड़े संग्रहों में बांटा गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं।
पांच निकाय?
हाँ, एक है दिग निकाय, जिसमें लंबे उपदेश हैं जो बड़े दार्शनिक विषयों पर हैं, जैसे बुद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन इसी में है। फिर है मध्यम निकाय, इसमें मध्यम लंबाई के 150 से ज्यादा सुत्त हैं। ये मूल सिद्धांतों को गहराई से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ध्यान, सतिपट्ठान सुत्त, कर्म, अनात्म, इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या है इसमें। राजाओं से, तपस्वियों से, आम लोगों से बुद्ध के संवाद है इसमें।
ये तो काफी रोचक लगता है।
बहुत। फिर है संयुक्त निकाय, इसमें हजारों छोटे छोटे सुत्तों को विषय के हिसाब से एक साथ रखा गया है, जैसे चार आर्य सत्यों पर सारे सुत्त एक जगह, अष्टांगिक मार्ग पर एक जगह। ये दिखाता है कि सारी शिक्षाएं कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं।
ये याद रखने में आसान होता होगा।
हाँ, और इसी तरह अंगुत्तर निकाय है, जो संख्या के आधार पर सुत्तों को व्यवस्थित करता है, जैसे एक जरूरी चीज, दो बातें, तीन रत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, इस तरह 11 तक। ये जटिल सिद्धांतों को बहुत सुलभ और यादगार बना देता है।
वाह, क्या तरीका है। और पांचवा निकाय?
पांचवा है खुद्दक निकाय, यानी छोटे ग्रंथों का संग्रह। इसमें 15 से 18 अलग अलग ग्रंथ हैं, और इसमें कुछ सबसे प्रसिद्ध और प्यारे ग्रंथ शामिल हैं।
जैसे?
जैसे धम्मपद, नैतिकता और मन पर 423 बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक पद्य हैं इसमें। इसे बौद्ध ज्ञान का सार माना जाता है। फिर जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों की 500 से ज्यादा कहानियां, जो दया, धैर्य जैसे गुण सिखाती हैं।
हाँ, जातक कथाएं तो मैंने बचपन में पढ़ी हैं।
बिल्कुल। फिर इसमें सुत्त निपात है, जिसमें बहुत शुरुआती उपदेश पद्य रूप में है, और थेरगाथा और थेरी गाथा है, बुद्ध के शुरुआती पुरुष और महिला शिष्यों की आध्यात्मिक यात्रा और उनके ज्ञानोदय के अनुभवों पर अद्भुत कविताएं। बहुत प्रेरणादायक हैं ये।
तो सुत्ता पिटक तो वाकई एक खजाना है, कहानियां, सिद्धांत, कविताएं, संवाद, सब कुछ है इसमें।
हाँ बिल्कुल, ये शिक्षाओं का हृदय है।
और अभिधम्म पिटक, आपने कहा वो थोड़ा जटिल है, उसका सार क्या है?
देखिए, अभिधम्म पिटक थोड़ा दार्शनिक और मनोविज्ञानिक है। ये अस्तित्व की प्रकृति का बहुत व्यवस्थित और बारीक विश्लेषण करता है। ये हर चीज को, हर अनुभव को उसके अंतिम सबसे छोटे घटकों में तोड़कर देखता है। इन घटकों को धम्म कहते हैं।
धम्म?
हाँ, यहाँ धम्म का मतलब है परम वास्तविकताएं, जैसे चेतना की अवस्थाएं, मन के साथ उठने वाले अच्छे बुरे विचार या भाव, मानसिक कारक और भौतिक तत्व। अभिधम्म इन सबको लिस्ट करता है और फिर ये विश्लेषण करता है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें 24 तरह के कारण संबंधों की बात की गई है।
24 तरह के? बापरे!
हाँ, ये बहुत गहरा विश्लेषण है। इसका मकसद ये दिखाना है कि जिसे हम मैं या एक ठोस व्यक्ति समझते हैं, वो असल में इन क्षणिक धम्मों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है, कुछ भी स्थायी नहीं है।
तो इसका फायदा क्या है इतना विश्लेषण करने का?
फायदा ये है कि जब हम इस सच्चाई को, इस अनात्म भाव को सीधे अनुभव से समझते हैं, तो हमारी जो पकड़ है मैं और मेरे पर, वो ढीली पड़ जाती है, और यही पकड़ दुख का मूल कारण है। तो इस गहरी समझ पन्या से मोह कम होता है और मुक्ति का रास्ता खुलता है। ये एक तरह से मन की इंजीनियरिंग समझने जैसा है।
समझ गया, ये वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, अगर हम इन तीनों पिटकों के मुख्य विषयों या संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे?
हाँ, कुछ बुनियादी विषय हैं जो बार बार आते हैं। सबसे पहले तो चार आर्य सत्य, ये समझिए बौद्ध मार्ग का फाउंडेशन है।
क्या है वो चार सत्य?
पहला, जीवन में दुख या असंतोष दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह और हमारा अज्ञानता। तीसरा, इस दुख का अंत संभव है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा, इस अंत तक पहुंचने का एक निश्चित मार्ग है।
और वो मार्ग कौन सा है?
वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये दुख खत्म करने का प्रैक्टिकल नुस्खा है। इसमें 8 बातें हैं जिन्हें साथ साथ साधना होता है।
8 बातें कौन सी?
मोटे तौर पर इन्हें 3 हिस्सों में बांटते हैं। ज्ञान, सही समझ, सही इरादा, नैतिक आचरण, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, और मानसिक अनुशासन, सही प्रयास, सही सजगता या माइंडफुलनेस, सही एकाग्रता। ये 8ों मिलकर काम करते हैं।
ये जीवन जीने का एक संतुलित तरीका लगता है।
बिल्कुल। फिर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है त्रिलक्षण, अस्तित्व की 3 निशानियां।
त्रिलक्षण?
हाँ, अनिच्छा, अनित्यता, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारा शरीर, हमारे विचार, रिश्ते, दुनिया, सब कुछ। दूसरा, दुख, असंतोष या पीड़ा, क्योंकि चीजें अनित्य है, बदलती रहती हैं और हम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। और तीसरा, अनाता, अनात्म, यानी कोई स्थायी स्वतंत्र मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें।
ये अनात्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है समझना।
हाँ, ये गहरा है, लेकिन कहा गया है कि इस सच्चाई को समझना मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई ठोस मैं है ही नहीं जिसे बचाना है या संतुष्ट करना है, तो बहुत सारा बोझ उतर जाता है।
और कर्म का सिद्धांत?
हाँ, कर्म भी एक मुख्य विषय है। ये कारण और प्रभाव का नियम है, लेकिन ये भाग्य या किस्मत नहीं है, ये हमारे इरादे, चेतना से जुड़े कर्मों की बात करता है। हम जो भी सोच समझ कर करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसका नतीजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। अच्छे इरादे से किए गए काम, जैसे दान, दया, समझदारी, सुख लाते हैं, और बुरे इरादे से किए गए काम, जैसे लालच, नफरत, भ्रम, दुख लाते हैं।
तो ये हमें जिम्मेदार बनाता है अपने सुख दुख के लिए।
बिल्कुल, ये एक तरह से सशक्तिकरण का टूल है। आप अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकते हैं।
और प्रतीत्य समुत्पाद, ये क्या है?
प्रतीत्य समुत्पाद, आश्रित उत्पत्ति, ये बौद्ध धर्म की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। ये बताता है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप अकेले मौजूद नहीं है। हर चीज किसी न किसी कारण या कंडीशन पर निर्भर होकर ही पैदा होती है या मौजूद रहती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक जटिल जाल की तरह।
सब कुछ जुड़ा है।
हाँ, और ये दुख कैसे पैदा होता है, इसकी भी व्याख्या करता है। अज्ञान से शुरू होकर 12 कड़ियों की एक चेन बनती है, जो बुढ़ापे और मृत्यु तक ले जाती है। अगर आप उस चेन की किसी भी कड़ी को, खासकर अज्ञान की कड़ी को तोड़ दें, तो दुख का पूरा चक्र ढह जाता है।
ये तो बहुत गहरा है, और इन सबको साधने का तरीका क्या है?
तरीका है सती, स्मृति या सजगता, और भावना, ध्यान। सती मतलब वर्तमान क्षण में जो हो रहा है उसे बिना जज किए पूरी जागरूकता से देखना। आनापाना सती इसका एक उदाहरण है, और भावना मतलब अच्छे गुणों को विकसित करना, जैसे करुणा, दया और मैत्ता या मैत्री या प्रेमपूर्ण दया। दुखी प्राणियों के प्रति असीम करुणा और बिना शर्त मैत्री विकसित करने पर बहुत जोर देता है। ये गुण मन को नफरत और गुस्से से साफ करने के लिए और समाज में सद्भाव लाने के लिए जरूरी हैं।
मध्यम मार्ग की भी बात आती है?
हाँ, मध्यम मार्ग यानी अतिवाद से बचना, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में पड़ना, ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, जीवन में संतुलन बनाए रखना।
ये सारी बातें तो बहुत गहरी हैं। क्या त्रिपिटक में कुछ ऐसी पंक्तियां या उद्धरण हैं जो आसानी से याद रह जाएं और प्रेरणा दें?
हाँ बिल्कुल है, त्रिपिटक यादगार पंक्तियों और विचारों से भरा पड़ा है, कुछ साझा करते हैं।
जरूर।
पहला धम्मपद से ही लेते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेष्ठा मनोमया, जिसका भावार्थ है मन सभी मानसिक अवस्थाओं से पहले आता है, मन उनका प्रमुख है, वे सभी मन से गढ़े गए हैं, यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसकी कभी न जाने वाली छाया की तरह उसका अनुसरण करता है।
वाह, सब कुछ हमारे मन पर है, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है।
बिल्कुल, आंतरिक परिवर्तन ही कुंजी है।
और कोई?
एक और धम्मपद से ही, जो पूरे बौद्ध मार्ग का सार है, सब पापास्सा अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोद्यूपनम एतम बुद्धानम शासनम, यानी सभी बुराई से बचना, अच्छाई पैदा करना, कुशल कर्म करना और अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है।
कितना सीधा और स्पष्ट, शील, समाधि, प्रज्ञा, यही तीन बातें आ गई इसमें।
हाँ, फिर एक कालाम सूत्र से, जो आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आपने उसे सुना है, या वो परंपरा से चली आ रही है, या ग्रंथों में लिखी है, या आपका गुरु कह रहा है, लेकिन जब आप खुद अवलोकन और विश्लेषण के बाद पाते हैं कि कोई भी बात तर्क से सहमत है और सभी के लिए हितकर और लाभकारी है, तब उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जिएं।
ये तो कमाल है, मतलब आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो, अपनी बुद्धि लगाओ, अपने अनुभव से परखो, ये तो स्वतंत्र जांच का अधिकार देता है।
बिल्कुल, बुद्ध अंधे विश्वास के सख्त खिलाफ थे। फिर उनके अंतिम शब्दों में से एक है, अत्त दीपो भव अत्त शरणो अनन्य शरणो, धम्म दीपो भव धम्म शरणो अनन्य शरणो, यानी तुम स्वयं अपने दीप दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण बनो, कोई और शरण नहीं। धम्म को अपना दीप बनाओ, धम्म को अपनी शरण, कोई और शरण नहीं।
ये तो बहुत गहरा संदेश है आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता का, किसी बाहरी उद्धारकर्ता पर निर्भर मत रहो, अपने अभ्यास और अपनी समझ पर भरोसा रखो।
हाँ, और एक और बहुत सुंदर बात, नहीं वेरेण वेराणी समम तंथिध कुदाचनम अवेरेण च सम्मंती एषु धम्मो सनंतनो, मतलब घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम मैत्री से ही शांत होती है, यही सनातन नियम है।
नफरत का जवाब नफरत नहीं प्यार है, कितनी सच्ची बात है।
हाँ, और अंत में एक और, जैसे महान सागर का एक ही स्वाद है नमक का स्वाद, वैसे ही इस शिक्षा धम्म का भी एक ही स्वाद है मुक्ति का स्वाद।
मतलब इतनी सारी शिक्षाएं, इतने ग्रंथ, सबका लक्ष्य एक ही है, दुख से मुक्ति।
बिल्कुल,
ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या आज की जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है?
हाँ बिल्कुल है, ये शिक्षाएं भले ही प्राचीन हो पर आज के जीवन के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है।
जैसे?
सबसे पहले तो तनाव और चिंता कम करने में, सती ध्यान, खासकर आनापाना सती, सांस पर ध्यान देना, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने, चिंता कम करने और स्ट्रेस मैनेज करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब हम वर्तमान क्षण में रहना सीखते हैं तो भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे के चक्कर से बाहर निकल पाते हैं।
हाँ, आजकल स्ट्रेस तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है।
और भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने में, अभिधम्म में जो मन की अवस्थाओं का बारीक विश्लेषण है वो अपनी भावनाओं को समझने के लिए एक नक्शा देता है। जब आप अपने गुस्से, जलन या उदासी को बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखना सीखते हैं तो आप उनके द्वारा कंट्रोल होने से बच जाते हैं और मैत्री मित्रता का अभ्यास करने से सहानुभूति बढ़ती है और रिश्ते बेहतर होते हैं।
ये तो बहुत काम की बात है, आजकल रिश्तों में कितनी दिक्कतें आती हैं।
बिल्कुल, फिर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। कर्म का सिद्धांत हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जब हम समझते हैं कि हमारे हर इरादे वाले काम का नतीजा होगा तो हम अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में ज्यादा सोच समझकर और नैतिक फैसले लेने लगते हैं।
हाँ, ये अपनी करनी का फल वाली बात।
फिर जीवन में जो बदलाव और नुकसान होते हैं उनका सामना करने में अनित्यता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि बदलाव तो होना ही है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस समझ से हमें चीजों या लोगों से जो मोह या अटैचमेंट होता है उसे छोड़ने में मदद मिलती है। इससे नुकसान का दर्द कम होता है और हम ज्यादा लचीले बनते हैं।
ये स्वीकार करना कि सब कुछ बदलता है मुश्किल है पर जरूरी है।
हाँ, और ये एक नैतिक ढांचा भी देता है। पंचशील, हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ और नशे से दूर रहना, ये सरल है पर बहुत गहरे नैतिक सिद्धांत हैं। इन्हें हम आज के संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं, जैसे अपनी नौकरी में ईमानदारी, सम्यक आजीविका, ऑनलाइन बातचीत में सच बोलना, सम्यक वाणी, जिम्मेदार उपभोक्ता बनना वगैरह।
और क्या ये जीवन को एक गहरा मकसद भी देता है?
हाँ जरूर, त्रिपिटक एक ऐसी दुनिया का नजरिया देता है जो सिर्फ चीजें इकट्ठा करने या मजे करने तक सीमित नहीं है। ये बताता है कि असली और टिकाऊ खुशी मन को साफ करने, चीजों की असलियत समझने और दूसरों के प्रति दया भाव रखने में मिलती है। ये जीवन को एक गहरा और ज्यादा सार्थक उद्देश्य देता है।
तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के लिए भी अच्छा है।
बिल्कुल, सम्यक आजीविका, मैत्री, करुणा, अहिंसा, ये सब सिद्धांत बेहतर समाज बनाने में भी मदद करते हैं।
तो अगर हम त्रिपिटक से कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें लेकर जाना चाहें तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे मूल्यवान सबक ये है कि दुख कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं। नहीं, ये एक सशर्त घटना है, इसके कारण है और उन कारणों को समझकर प्रयास करके इसे दूर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी आशा और सशक्तिकरण का संदेश है। हमारी खुशी, हमारी मुक्ति की चाबी हमारे अपने मन के भीतर है।
हमारी चाबी हमारे हाथ में है, ये तो बहुत बड़ी बात है।
और दूसरी स्थायी अंतर्दृष्टि ये है कि हमारा अपना भला और दूसरों का भला, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम खुद शांत और करुणामय होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी बेहतर होते हैं, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमें भी शांति मिलती है। ये अलगाव की सोच से जुड़ाव की सोच की ओर ले जाता है।
व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण एक साथ चलते हैं।
हाँ, बौद्ध धर्म जैसा कि इन ग्रंथों में बताया गया है वो सिर्फ विश्वास का धर्म नहीं बल्कि एक तरह से मन का विज्ञान है। ज्ञान और करुणा विकसित करने की एक प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रणाली है।
2000 साल पुरानी ये लाइब्रेरी, ये ज्ञान आज भी कितना ताजा और प्रासंगिक लगता है।
इसकी गहराई, इसकी मानवैज्ञानिक समझ और इसका व्यवहारिक होना, यही शायद इसका अद्वितीय मूल्य है।
हाँ, ये हमें अपने अंदर झांकने और सच्ची शांति पाने का एक विस्तृत नक्शा और गाइड बुक देता है।
और शायद सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसकी किसी एक शिक्षा, मान लीजिए सिर्फ सती माइंडफुलनेस या सिर्फ मैत्री प्रेम पूर्ण दया को ही अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उतारने की कोशिश करें तो हमारे अनुभव में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है ना।
बिल्कुल, शायद यही छोटी सी कोशिश एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।
जरूर,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।